जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल शाम को हम पहुंचे थे जब चैतन्य महाप्रभु वो अब सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा ले रहे हैं और सर्वम भट्टाचार्य के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अब निकल रहे थे उनके निवास स्थान से तो सर्वभौम भट्टाचार्य वहां पर वो व्याकुल हो गए। अब ये देखते हुए कि उनके प्रभु महाप्रभु जो हैं वो अब उनको छोड़कर जा रहे हैं और कुछ निश्चित नहीं कितने समय के लिए, तो सर्वभौम भट्टाचार्य जो एक समय ब्रह्मवादी थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि अक्सर जो मायावादी या ब्रह्मवादी होते हैं वो भावनाओं में नहीं बहते, उनका हृदय बहुत कठोर सा होता है, परंतु वही सर्वम भट्टाचार्य अब व्याकुल होकर वो बेहोश होकर गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, महानुभावेर चित्तेर स्वभाव एहय पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृपा और दया के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जब सर्वम भट्टाचार्य इस प्रकार से गिर गए बेहोश होकर, चैतन्य महाप्रभु ने मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि जाने से पहले अरे संभालो थोड़ा कि इतने वरिष्ठ अब वैष्णव हो गए हैं और मुख्य पुजारी हैं जगन्नाथ जी के, तो यहां पर ये बेहोश होकर गिर गए तो कोई संभालो इन्हें। चैतन्य महाप्रभु ने मुड़कर भी नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महानुभावेर चित्तेर स्वभाव यही है। जो महानुभाव होते हैं उनके चित्त का ये एक स्वभाव देखा गया है, और वो कैसा स्वभाव है, पुष्प सम कोमल, कि कई बार वो पुष्प के समान कोमल रहते हैं, परंतु कई बार कठिन वज्रमय, कई बार देखा जाता है कि उनका स्वभाव वज्र के समान कठोर भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन न भुजाए, कि एक जो वैष्णव हैं उनकी जो क्रिया और उनकी जो मुद्रा है वो साधारण जन समुदाय नहीं समझ सकता। जैसे हम कह रहे थे कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी वो कीर्तन के पश्चात व्यासासन पर आंख बंद कर कुछ ध्यान अवस्था में थे, तो एक भक्त ने जब प्रभुपाद जी ने आंखें खोली तो पूछा, देखिए कई बार इन भक्तों में इतनी हिम्मत भी होती थी तो पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप क्या सोच रहे थे? अभी अभी आपने आंख बंद की, आंख बंद कर क्या सोच रहे थे? तो प्रभुपाद जी भी क्रोधित नहीं हुए। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि आज यशोदा माई ने कृष्ण के टिफिन में क्या पैक किया है। तो भक्त समझे, बाप रे, श्रील प्रभुपाद जी कौन से स्तर पर हैं? और वही प्रभुपाद जी के विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। एम्स्टरडैम के मंदिर में जब जगन्नाथ जी की स्थापना हो रही थी और सारे टीवी चैनल कैमरा लेकर आए थे और कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए, टीवी कैमरा के लिए सारी व्यवस्था ठीक थी परंतु जगन्नाथ जी के लिए व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी, तो प्रभुपाद जी इतना क्रोधित हुए और कुछ परवाह नहीं कि पूरे एम्स्टरडैम में प्रभुपाद जी को टीवी पर दिखाया जा रहा है इस क्रोध अवस्था में। तो जैसे हमने कर चर्चा की तो प्रभुपाद जी ने देखा यज्ञ के लिए फल नहीं है तो पूछा फल कहां पर है, तो उन्हें तो पता नहीं था यज्ञ क्या होता है और फल की क्या आवश्यकता है यज्ञ में। तो प्रेसिडेंट को लगा कि प्रभुपाद जी को अचानक भूख लगी, लगता फल मांग रहे हैं, तो फल काट कर दे दी। तो प्रभुपाद जी और क्रोधित हो गए और इस क्रोध अवस्था में सारे जो भक्त थे वो प्रभुपाद जी को देख भी नहीं पा रहे थे, ऐसे सिंह के समान गरज रहे थे प्रभुपाद जी। और उसी समय एक हिप्पी जो अब नया नया आना शुरू किया था मंदिर में, बड़े बाल बड़ी दाढ़ी और कपड़े सब फटे पुराने, अभी अभी आना शुरू किया था मंदिर में तो थोड़ा बहुत कुछ जानता था फिलॉसफी के बारे में, तो देखा सभी भक्त अब डरे हुए हैं, प्रभुपाद जी से थोड़ा दूर हटकर बैठे हुए हैं, तो ये प्रभुपाद जी के एकदम निकट बैठा था, तो प्रभुपाद जी को देख रहा है, भक्तों को देख रहा है, स्थिति को जान लिया, तो कहता है प्रभुपाद जी से, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो सारे भक्त अब सोचे, अरे बाप रे, आज तो इसका तिरोभाव है। तो देखिए वही प्रभुपाद जी जो इन भक्तों के ऊपर क्रोध कर रहे थे, कारण क्या था? क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा ठीक से नहीं हो रही थी, खुद की वजह से नहीं। और अब ये एक कल का आया हुआ हिप्पी प्रभुपाद जी को आदेश दे रहा है चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसके हाथ की जो माला थी ले ली और जप करना शुरू कर दिया, उसके आदेश का पालन किया, उस हिप्पी के आदेश का। और वो जब समारोह सब पूरा हुआ तो प्रभुपाद जी अब तुरंत निकल गए अपने कमरे में जाने के लिए, मंदिर से कुछ दूरी पर था प्रभुपाद जी का कमरा। तो प्रभुपाद जी के जो सर्वेंट थे वो आए प्रभुपाद जी के पास, श्रील प्रभुपाद इन्होंने आपके लिए फीस्ट वगैरह बनाया है। तो प्रभुपाद जी कहे कि मेरे कमरे में ले आना। तो जल्दी जल्दी वो सर्वेंट भागा प्लेट बनाने के लिए, क्योंकि एक ही गाड़ी थी उसी में प्रभुपाद जी के साथ जाना था, तो प्रभुपाद जी को रुकना ना पड़े इसलिए जल्दी जल्दी प्लेट बनाया। और भागते हुए जैसे ही आ रहा था वो, तो लड़खड़ा कर गिरा और सारा प्रसाद भी नीचे गिर गया। तो अब सोचे अब क्या करे, एक और बार जाकर प्लेट बनाए कि प्रभुपाद जी के साथ जाए या किसी और को बोले, असमंजस में पड़ गया। तो आकर गाड़ी में बैठ गया प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी बोले प्रसाद कहां है, तो प्रसाद गिर गया। तो प्रभुपाद जी ने जाकर उसे उठाकर प्लेट में डालकर लेकर आओ। तो वो तो कांप रहा था ऐसे, प्रभुपाद जी जब जिस टोन में बोले थे तो कांपते हुए सब कुछ कर रहा था वो। और प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे, प्रभुपाद जी ने वही प्रसाद खाया जो गिरा हुआ था, वही उठाकर वही प्रसाद खाया प्रभुपाद जी ने। और फिर फिर समय हुआ जो प्रभुपाद जी का मसाज किया करते थे वो भक्त की सेवा का समय हो गया। तो अब ये जो शेर की गुफा है इसमें कौन प्रवेश करेगा? प्रभुपाद जी का कमरा शेर की गुफा के समान लग रहा था सबको। तो बाकी जो सेवक बाहर आ गए, अब ये जो मसाज करने वाले भक्त थे इनको कहा अब जाओ, आप जाओ। तो बाकी तो बचकर आ गए, अब बोले थोड़ा तुम भी जाकर चख लो। तो ये भक्त अब दरवाजा धीरे से खोलते हैं और धीरे से खोलकर थोड़ा सा अपना मुंह अंदर झांकते हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है अंदर, टेम्परेचर कितना ऊपर है। तो जैसे ही अंदर वो अपना मुंह झांक कर देखते हैं तो भक्त क्या देखते हैं, प्रभुपाद जी अपने बेड के बिस्तर के ऊपर वो अपने हाथों से अपने घुटनों को बंद किए हैं। जैसे कई बार हम बच्चे करते हैं ऐसे घोड़े के समान आगे पीछे, तो प्रभुपाद जी ऐसे अपने घुटनों को अपने हाथों से बंद लॉक कर कर वो बिस्तर के ऊपर आगे पीछे होते हुए कह रहे थे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय का कीर्तन किए जा रहे थे, कीर्तन किए जा रहे थे और एकदम मग्न कीर्तन में। कोई क्रोध का लेश मात्र भी नहीं दिख रहा था। तो ये भक्त अब हिम्मत की कि अब प्रभुपाद जी तो एकदम पुष्प के समान कोमल और गौरनिताय का कीर्तन कर रहे हैं। तो हिम्मत इकट्ठा कर कर वो अंदर गए और अंदर जाकर खड़े हो गए प्रभुपाद जी वैसे ही जय गौरनिताय का कीर्तन कर रहे हैं। तो पूछा प्रभुपाद जी अभी अभी कुछ क्षण पहले आप एक सिंह के समान थे और सभी डर रहे थे, थर थर कांप रहे थे, आपको देख भी नहीं पा रहे थे, परंतु अभी मैं देखता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो एक समुद्र के समान होता है कि समुद्र के सतह पर यदि देखो, सरफेस पे देखो तो बड़ी बड़ी लहरें दिखती है और समुद्र जो है बहुत हलचल भी दिखता है सतह पर, हर समय लहरें आती है जाती हैं, परंतु समुद्र के अंदर जाओ गहराई में तो एकदम शांत, वो समुद्र एकदम शांत रहता है। और ये कहकर फिर से श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू किया जय गौरनिताय जय गौरनिताय। तो कई बार भक्तों को समझ में नहीं आता था कि प्रभुपाद जी कब पुष्प के समान हो जाएंगे कब वज्र के समान। जैसे एक बार कई भक्त कृष्ण बलराम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, तो कई बार जब प्रभुपाद थोड़े ऐसे बहुत गंभीर मूड में रहते थे तो कोई कुछ नहीं कहता था जब तक प्रभुपाद कुछ कहे नहीं। तो प्रभुपाद जी थोड़े गंभीर मूड में थे और तभी ऐसे थोड़ा माहौल गंभीर सा था, थोड़ा भारी था, तो अचानक प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि हम कृष्ण बलराम की परिक्रमा करें तो सारे तीर्थ स्थानों की परिक्रमा हमने कर ली मानो। तो अब सोचो थोड़ा प्रभुपाद जी अब खुद से होकर कुछ कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण बलराम को मिठाइयां बहुत पसंद है, वो दूध दही माखन की मिठाइयां बनाई बहुत पसंद है उनको। तो अचानक एक भक्त जो अब बहुत ही कुछ समय हुआ था, दीक्षा भी नहीं हुई थी, अभी अभी आए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पीछे से कहा प्रभुपाद जी मुझे भी मिठाइयां बहुत अच्छी लगती है। अब बड़े बड़े जो सन्यासी थे उन्होंने सोचा अब तो मिलेगी इसे मिठाई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हें मिठाइयां अच्छी लगती है, तुम्हारा नाम दधी भक्ष दास, वही दीक्षा दे दी प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण का एक नाम है दधी भक्ष, जो दधी का भक्षण करते हैं और दूध दही माखन की बनी मिठाइयां खाते हैं, तो तुम्हें मिठाइयां अच्छी लगती है, तुम्हारा नाम दधी भक्ष दास। और वो आज भी हमारे मुंबई के मंदिर में है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य दधी भक्ष प्रभु। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने ये कल्पना की थी कि अब तो वज्र आने वाला है, परंतु प्रभुपाद जी पुष्प के समान, एक कोमल पुष्प के समान बरसे इस व्यक्ति के ऊपर। देखिए उधर ही तुरंत दीक्षा मिल गई, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, तुरंत वहीं पर कृपा, कॉजलेस मर्सी जिसे कहते हैं। तो यहां पर यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही श्री चैतन्य महाप्रभु सबके हस्त पकड़कर आज्ञा मांग रहे थे कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं दक्षिण भारत जाऊं, और सर्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा ले रहे थे कि आप आज्ञा दीजिए। वही सर्वम भट्टाचार्य जिनको अभी अभी चैतन्य महाप्रभु ने जिनका उद्धार किया, उन्हीं से आज्ञा ले रहे हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु अब वज्र के समान प्रतीत हो रहे हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने। तो इसलिए कहा गया है महानुभावेर चित्तेर स्वभाव एई है, पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। पुष्प के समान कोमल और कई बार वज्र के समान कठोर, हालांकि वो सब कुछ लोगों के उद्धार के लिए ही होता है। तो फिर नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने देखा कि सर्वम भट्टाचार्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने सर्वम भट्टाचार्य को भक्तों की सहायता से उठाया और उठाकर वो उनके घर पर ले गए। यहां पर हम देखते हैं कि क्या स्तर है, देखिए उन पार्षदों का चैतन्य महाप्रभु के, कि चैतन्य महाप्रभु अब केवल दो कदम निकले हैं जाने के लिए और उनकी भावना देखिए कि मूर्छित होकर गिर गए। कितनी बार हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं कि जब कोई जा रहा होता है, कोई भक्त जा रहा होता है, या कोई ऐसी स्थिति है कि हम कोई महानुभाव के वियोग में होने वाले हैं, कभी ऐसा होता है कि हम मूर्छित होकर गिर जाएं? इस भौतिक संसार में भी लोग कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, मैं मेरे माता पिता से प्रेम करता हूं, मैं मेरे पत्नी से, भाई से, पुत्र से, पुत्री से, सगे संबंधियों से इतना प्रेम करता हूं, परंतु कहां पर देखा गया है कि जब सगे संबंधी छोड़कर जाते हैं तो कोई मूर्छित होकर गिर गया? इसे कहते हैं प्रेम, यह है वास्तविक प्रेम। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत सर्वम भट्टाचार्य को उनके निवास स्थान पर ले जाते हैं और सभी भक्त अब चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे, तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ वहां से जाते हैं अलारनाथ, और वहां पर वो अपना दंडवत देते हैं श्री अलारनाथ जी को, और भाव विभोर होकर वो नृत्य प्रारंभ करते हैं, कीर्तन और नृत्य प्रारंभ करते हैं। और वहां के उस ग्राम के जो रहवासी वो सभी आते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु को पहली बार अब देख रहे हैं, ये कौन सन्यासी है और ये इतनी भावना से कैसे कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। तो जैसे ही आते हैं तो वो केवल चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई गीता कोर्स में बिठाया गया और उनको फिर फॉलो अप प्रोग्राम, काउंसलिंग सेशन, उसके बाद में माला दी गई और उसके बाद में कहा गया आप माला शुरू करो और पूछना पड़ा कि शुरू की कि नहीं, कितनी हो रही। कितनी बार हमको प्रचार के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने केवल कीर्तन किया, नृत्य किया और जितने सारे आए थे वो तुरंत शुरू हो गए कीर्तन करना। और वो भी ऐसा नहीं कि कई बार देखते हैं कि कोई पी वी कर आता है तो शुरू करता है कीर्तन। कोई ऐसे लोग नहीं थे, वो सब शुद्ध लोग थे। केवल चैतन्य महाप्रभु के संग से दर्शन पवित्र कोरे, ए तुम्हार गुण कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से उनके अंदर जो सुप्त कृष्ण भावना थी वो जागृत हो गई। और इसको देखने के पश्चात वहां पर नित्यानंद प्रभु क्योंकि वो इतने प्रचार के मूड में थे, इसीलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई को जब देखा तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा इनका उद्धार करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु किसी दारू की दुकान में घुस जाते थे प्रचार करने के लिए, तो सब भक्त लोग रोकते थे, भाई ठीक है प्रचार करना है परंतु ऐसी जगहों पर मत जाओ, लोग देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों जा रहे हो दारू की दुकान में। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे लोगों को चुनते थे प्रचार के लिए, जगाए मधाई किसी कोई नशा पान कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जब ऐसे व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को जो कहा गया है पतित पावन अवतार, वो नाम उनका सिद्ध होगा। तो यहां पर नित्यानंद प्रभु सभी कीर्तन में भाव विभोर थे, परंतु नित्यानंद प्रभु ये सारे जो उस ग्राम के रहवासी अलारनाथ के आए थे उनके ऊपर वो अपने दृष्टिपात कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एई रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। बहुत सुंदर ये श्लोक है। यहां पर कृष्णदास करवाज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस श्लोक में नित्यानंद प्रभु ने घोषणा की, क्या घोषणा की, जब उन्होंने देखा ये सारे भक्तगण को कीर्तन करते हुए, एई रूप नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा आगे चलकर मैं ये घोषणा करता हूं कि जहां कहीं पर भी चैतन्य महाप्रभु जाएंगे या उनका आंदोलन जाएगा, नृत्य करे ग्रामे ग्रामे, सब जगह पर ये नृत्य कर लोग क्या गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहां पर नित्यानंद प्रभु इस्कॉन के विषय में घोषणा कर रहे हैं कि आगे चलकर इस्कॉन की स्थापना होगी और सारे नगर आदि ग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है हरि नाम है वो फैलेगा। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं और वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के ये आदेश का हम पालन कर रहे हैं, कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कुछ प्रयास कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के इस घोषणा का आदेश का पालन करते हुए। और ये सत्य बात है कि ये वास्तविक रूप में एक जादू है। ये एक जादू है कि किस प्रकार से ऐसे प्रांतों में चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहुंची है जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लोग इतना शुद्ध जीवन की कल्पना भी करेंगे, जीना तो दूर की बात है। जैसे इंद्रदुम्न महाराज वो एक बार बता रहे थे, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज वो एक ऐसे शिष्य हैं प्रभुपाद जी के जो ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां पर कोई व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए। तो वो अफ्रीका में गए और अफ्रीका में वो ऐसे ऐसे गांवों में, अफ्रीका के जो गांव, और अफ्रीका के गांव जो हैं वो ऐसे नहीं कि कोई भारत के गांव जो बहुत सत्वगुण में होते हैं, ऐसे कोई गांव नहीं होते वहां के। वहां के जो गांव हैं मतलब वहां के अफ्रीका के जंगली लोग रहते हैं, और अफ्रीका के जंगली लोग क्या खाते हैं, मनुष्यों को, उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं कैनिबल्स, नरभक्षी। तो जब वो अफ्रीका में थे तो ऐसे ही एक क्या कहते हैं उसको, कबीले का सरदार, कबीला कहते हैं वो ट्राइबल पीपल, उनका सरदार आया और इंद्रदुम्न महाराज को वो इनविटेशन दिए लंच के लिए आई। तो इंद्रदुम्न महाराज अब सोच रहे थे लंच के लिए इनविटेशन दिया है, मतलब अर्थ क्या है इसका, क्या क्या मैं लंच बनने वाला हूं कि क्या है मुझे लंच खिलाने वाले हैं। तो ये सोचे कि जाना चाहिए, देखते हैं प्रभुपाद की कृपा होगी तो देखते हैं इनको भी प्रचार कर लेंगे। तो वहां पर जब गए तो इनके लिए बड़ा व्यासासन रखा था, बड़ा व्यासासन इनके लिए रखा था और वहां पर इनको बिठाया और पहले इनकी पूजा की गई। तो थोड़ा ये डर गए कि बलि के पहले कुछ पूजा की जाती है तो क्या उस प्रकार की पूजा तो नहीं चल रही। और उसके पश्चात इतना आश्चर्य होने हुआ कि ये जाकर अंदर से श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज लाके उनको दी, इस पे से आप कुछ बोलिए। ये अफ्रीका के कोई जंगली कबीले का सरदार, प्रभुपाद की गीता मिली तो ये नित्यानंद प्रभु यहां पर कह रहे हैं। जैसे मुझे एक भक्त बता रहे थे यहां पर लासर गांव में कैसे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, लासर गांव पासी में है, तो वहां पर एक परिवार की एक महिला वो जा रही थी नदी से कुछ पानी वगैरह लेने के लिए, तो देखा एक कोई पोटली से पैर टकराया, बंद कुछ पोटली थी पैर टकराया, तो ध्यान नहीं दिया कुछ होगा। वापस जब आ रही थी फिर से पैर टकराया उस पोटली से, तो सोचा कि दूसरी बार पैर टकराया तो कुछ ना कुछ विशेष होगा, तो खोला उस पोटली को, पोटली के अंदर भगवद गीता एज इट इज। तो आकर अपने पुत्र को दी कि ऐसे ऐसे भगवद गीता की पुस्तकें मिली है, तो उनके पुत्र ने भगवद गीता पढ़ी और जब भगवद गीता पढ़ी तो प्रभुपाद के वाक्य इतने ज्यादा मन में बैठ गए कि ये भक्त ने सोचा कि ये किताब तो पूरे गांव में होनी चाहिए लासर गांव में। तो पता लगा कि कहां से ये किताब आई है, तो जुहू पहुंचे बंबई और वहां से ऑर्डर किया पूरे गांव के लिए भगवद गीता एज इट इज, और पूरे गांव में भगवद गीता बांटी और गांव वाले भी सभी खरीद लिए कि भाई अगर तुम कह रहे हो तो हम खरीद लेंगे। तो पूरे गांव में भगवद गीता बांटी। तो उनको जब पूछा गया कि आपको ये गीता में क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत ये जो वर्ड यूज किया है ये मुझे बहुत पसंद है, कृष्ण भावनामृत। देखिए श्रुत कीर्ति प्रभु वो हमारे मंदिर आए थे कुछ महीने पहले, तो वो बता रहे थे कि वो ब्राजील नाम के एक देश में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ऐसे ही रास्ते में कहीं पर एक फैमिली से मिले, वो एक परिवार से मिले और वो व्यक्ति कह रहा था श्रुत कीर्ति प्रभु को कि कैसे वो भक्ति में आया। तो ब्राजील में ये हाथों के ऊपर शरीर के ऊपर वो टैटूइंग करते हैं, क्या कहते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, वो लोग लिखते हैं ना अपने हाथ के ऊपर हनुमान जी और ये सब बजरंग बली, क्या खोदना गोदन, तो वो जो पाश्चात्य देश में भी वो गोदना वो लोग बहुत करते हैं, चारों तरफ सब जगह पर अपने शरीर पर बहुत अनशन कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति इसको भी अपने शरीर के ऊपर ये टैटूइंग करना था गोदना, तो इसने सोचा कि मैं कुछ हट कर करता हूं जो, और ये लोग जो करते हैं अपने शरीर के ऊपर ऐसी ऐसी चित्र या कुछ वाक्य ऐसे ऐसे जो سب سے ہٹ کر ہونا چاہیے. میں نے امریکہ میں دیکھا ایک ویکتی نے اپنے یہاں اوپر ماتھے پر کا سب کچھ کر لیا ہے. پربھوپا جی کی ایک ششیا ہوئی تو انہوں نے پربھوپا جی کو پوچھا کہ پربھوپا جی ایک آدیش دیجئے جو میں اپنے جیون میں پالن کروں. تو پربھوپا جی نے کہا کہ تمہارے ہونٹوں پر ہر سمے ہرے کرشن مہامنتر ہونا چاہیے. تو انہوں نے ہونٹوں کے اوپر ٹیٹو کر دیا پورا ہرے کرشن مہامنتر. تو یہ ویکتی نے سوچا کہ میں کچھ ایسا اپنے شریر کے اوپر یہ ٹیٹو کروں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ سب سے ہٹ کر اس نے کچھ کیا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں نے ایک بار یہ جو بھارت میں سنسکرت بھاشا ہے, یہ سنسکرت بھاشا دکھنے میں بہت اچھی دکھتی ہے, جو دیوناگری لکھی جاتی ہے دکھنے میں بہت ہٹ کر اور الگ اچھی دکھتی ہے, تو میں وہ سنسکرت بھاشا اپنے شریر پر ٹیٹو کروں گا. تو اب سنسکرت بھاشا کہاں سے ملے گی؟ تو اسے یاد آیا کہ میرے گھر میں 25 سال پہلے ایک کتاب ہے پڑی ہوئی, 25 سال پرانی, جس کے اندر یہ سب سنسکرت کے کچھ لکھے ہوئے ہیں. اور وہ کون سی کتاب تھی؟ بھگوت گیتا ایز اٹ از. تو وہ گئے گھر پر اور بھگوت گیتا ایز اٹ از, جو 25 سال سے ایز اٹ از پڑی ہوئی تھی, اسے باہر نکالا. اور اس بھگوت گیتا میں اب دیکھنے لگے کہ کون سا سب سے اچھا وہ سنسکرت کا شلوک ہے جو میں اپنے اس کے اوپر کروں, شریر کے اوپر ٹیٹو. تو ڈھونڈتے 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 پوری گیتا پڑھ ڈالی. اور جب گیتا پڑھنا شروع کیا تو پتا لگا, ارے بھائی یہ کیول میرے چمڑی کے اوپر نہیں بلکہ میرے ہردے کے اوپر یہ گودنا ہو رہا ہے, یہ ٹیٹوئنگ میرے ہردے کے اوپر ہو رہا ہے. اور جیسے انہوں نے شروع کیا تو وہیں پر بیٹھ کر پوری گیتا ختم کی پڑھنی. اور کیا ہوتا ہے جب پوری گیتا کوئی ویکتی ایسے پڑھ لیتا ہے؟ بھوتک جیون سماپت. اور وہ بھکت بن گئے ہرے کرشنا آندولن کے. تو یدی کسی کو ٹیٹو بھی کرنا ہے تو بھگوت گیتا میں سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے نتیانند پربھو یہ گھوشنا کر رہے ہیں, ای روپے نرتیہ آگے ہبے گرامے گرامے, اسی پرکار سے ہر گرام میں لوگ نرتیہ کریں گے, ہری نام لیں گے. اور شیلا پربھوپا جی بہت ہی پرسنتا سے اس تاتپر میں لکھتے ہیں اور ہم کچھ پریاس کر رہے ہیں یہ نتیانند پربھو کی گھوشنا کو سدھ کرنے کا. تو اب چیتنیہ مہاپربھو انہوں نے جب اپنا کیرتن سمپن کیا تو نتیانند پربھو نے چیتنیہ مہاپربھو کو کہا کہ آپ کے لیے پرساد کی ویوستھا کی گئی ہے. تو پرساد کے لیے چیتنیہ مہاپربھو نتیانند پربھو گئے اور سارے جو بھکت تھے وہ باہر پرتیکشا کر رہے تھے. اب کس کی پرتیکشا کر رہے تھے؟ مہاپرساد. وہ مہاپرساد کس کا؟ خالی چیتنیہ مہاپربھو کا مہاپرساد. ایسا نہیں کہ ماترا میں چاہیے تھا انہیں چیتنیہ مہاپربھو کے مکھ سے نکلا ہوا پرساد, کیول درشن کیا اور کہا مہاپرساد چاہیے. تو سارے بھکت باہر ایک پرکار کا جلوس ہو گیا باہر کھڑا. تو نتیانند پربھو نے دروازہ بند کیا کہ چیتنیہ مہاپربھو کو شانتی سے پرساد لینا چاہیے. اور پرساد کے پشچات پھر سبھی کو وہاں پرساد دیا گیا چیتنیہ مہاپربھو کا, تو اور بھاو وبھور ہو گئے. اور اس کے پشچات پھر چیتنیہ مہاپربھو نے الارناتھ میں راتری میں وشرام کیا. اور وشرام کیا کیا یہاں پر کرشن داس کویراج گوسوامی کہتے ہیں کہ پوری رات کرشن کتھا, پوری رات کیول کرشن کتھا ہو رہی تھی بس. ایسا نہیں کہ کل یاترا کے لیے جانا ہے تو جلدی سو جاؤں. کئی بار ہم بولتے ہیں ارے کل گور پورنیما جلدی جلدی سو جاؤ, या कल यात्रा के लिए निकलना है सुबह सुबह तो जल्दी सो जाओ, रात भर कृष्ण कथा। और सुबह जब चैतन्य महाप्रभु अब तैयार हुए निकलने के लिए, तो सारे भक्तगण, अब वो समय आ गया जब चैतन्य महाप्रभु अकेले निकलने वाले हैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिल दुख हनी, पाछे कृष्णदास आया जल पात्र लानी। कि कृष्णदास जिनको नियुक्त किया गया था, वो पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का कमंडलू बहिर्वस्त्र ये सब लेकर वो चल रहे थे, परंतु विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुख हन। कि यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब मुड़े भक्तों से मिलने के बाद, अब मुड़े जाने के लिए, तो भक्त वहां पर व्याकुल हो गए, रो रहे थे, केवल एक ही चीज हो रही थी, उनके शरीर में आंसू बह रहे थे। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु मुड़ने के पश्चात केवल रो रहे थे, दोनों प्रभु और महाप्रभु दोनों रो रहे थे। भक्तगण और उनके स्वामी दोनों रो रहे, दोनों व्याकुल विच्छेद के कारण दोनों व्याकुल होकर रो रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे क्योंकि बद्ध जीवात्माओं का उद्धार होगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु अब भी अपने मन में इस बात को ठीक से पचा नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे इनके बिना रह पाऊंगा। इसे कहते हैं भक्त के प्रति प्रेम, कि इतनी व्याकुलता होनी चाहिए कि यदि मुझे भक्त का संग न मिले तो क्या मेरे अंदर व्याकुलता होती है कि नहीं। ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति का एक लक्षण है कि यदि भक्त का संग न मिले तो व्याकुलता होती है कि नहीं। विच्छेद व्याकुल प्रभु, यदि वो व्याकुलता नहीं हो रही तो जानना चाहिए कि अब तक हृदय जो है वो पिघला नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लंबी यात्रा करनी है और जैसे चैतन्य महाप्रभु अब आगे निकले, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना कीर्तन प्रारंभ किया। मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमावेशे आया करी नाम संकीर्तन। बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है, चैतन्य महाप्रभु की तुलना की गई है। मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, कि चैतन्य महाप्रभु की तुलना की गई है एक मत्त सिंह से। सिंह जानते हैं, नरसिंह जो सिंह है, तो सिंह जब मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, तो वो कैसे चिंघाड़ेगा। कल्पना कीजिए एक पागल सिंह कैसे चिंघाड़ेगा। करिला गमन प्रेमावेशे याया करी नाम संकीर्तन, उस प्रकार से चैतन्य सिंह, चैतन्य महाप्रभु जिसकी तुलना, जिनकी तुलना सिंह से की गई है, वो इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे जैसे कोई मत्त सिंह चिंघाड़ता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और जगह चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से कर रहे हैं। वो कहते हैं, चैतन्य सिंह हेर नव द्वीपे अवतारे, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकारे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, चैतन्य सिंहेर नव द्वीपे अवतारे, कि वो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने नवद्वीप में अवतार लिया एक सिंह के समान। सिंहेर ग्रीव, उनकी ग्रीवा एक सिंह के समान थी, उनके जो भुजाएं और कंधे थे, उनकी जो ग्रीवा थी वो सिंह के समान थी। सिंह ग्रीवा सिंह वीर्य, और उनका जो ऐश्वर्य और उनकी जो शक्ति थी, कीर्तन करने की जो शक्ति थी उनके अंदर, वो शक्ति एक सिंह के समान थी। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन प्रारंभ करते थे तो चैतन्य महाप्रभु कई बार इतना ऊपर नृत्य करते करते उछलते थे कि जो भक्त थे उनके अंदर ऐसा डर पैदा होता कि इतना ऊपर ये उछले हैं तो जब गिरेंगे तो पता नहीं कितना लगेगा इनको। तो इसलिए सची माता वो प्रार्थना करती थी भगवान से कि यदि मैंने कुछ भी भक्ति की हो तो मुझे एक आप वरदान दीजिए हे भगवान कि जब मेरा निमाय ये जब कीर्तन में ऊपर उछल कर नृत्य करता है तो जब नीचे मेरा निमाय आता है तो वो एकदम माखन के समान हल्का और कोमल बन जाए ताकि उसके शरीर में कोई चोट ना पहुंचे। ये प्रार्थना करती थी सची माता। इसलिए एक प्रभुपाद के शिष्य हमारे व्यासकी प्रभु आए थे, आप सब सुने होंगे उनका कीर्तन। तो उनको पूछा गया कि आप इतना कीर्तन करते हो तो कुछ आप बताइए कि कीर्तन में कैसे हम भगवान के प्रति भावनाएं लाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब कीर्तन करता हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, ये हृदय कठोर है एक पत्थर के समान, वज्र के समान, परंतु मैं एक चीज जानता हूं कि मेरे अंदर कुछ शक्ति है, शारीरिक शक्ति। तो मैं वो पूरी शक्ति डालता हूं अपने कीर्तन में, क्योंकि यदि हमारे पास भावना नहीं तो शक्ति तो डालनी चाहिए कीर्तन में। और जब हम अपनी जितनी भी शक्ति हम डालेंगे धीरे धीरे उससे कुछ भावना उत्पन्न होगी, उन्होंने कहा। इसलिए वो कहते हैं कि भाव विभोर हो जाना। कई बार लोग पूछते हैं मैं कीर्तन करता हूं तो वो ये जो चैतन्य चरितामृत में सब दिया गया है सब कुछ नहीं होता है मेरे अंदर, ये अश्रु और ये श्वेद और ये रोमांच कंपन गदगद हृदय गदगद कंठ और ये सब। तो उन्होंने कहा कि ये सब उनकी कृपा से आएगा, हमें डालनी है अपनी शक्ति। इसलिए यहां पर सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, जैसे एक सिंह की शक्ति होती है उस शक्ति से चैतन्य महाप्रभु हुंकार कर कीर्तन किया करते थे। तो हम भी जब कीर्तन करें तो इस प्रकार से सिंह की हुंकार की तरह कीर्तन होना चाहिए, मत्त सिंह के हुंकार की तरह। और अगले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर तुलना कर रहे हैं, फिर से चैतन्य महाप्रभु की तुलना सिंह से कर रहे हैं। और वो कहते हैं से सिंह व सुख जीवेर हृदय कंदरे कलमश द्विरड़ नाश यहार हुंकारे। वो कहते हैं से सिंह वसुक जीवेर, जीवात्माओं को पुकारते हुए कह रहे हैं जो वसुक जीवात्मा है उनका जो हृदय है उनका हृदय एक कंदरा के समान है। हृदय कंदरे, कंदरा किसे कहते हैं? एक गुफा को, गुफा को कंदरा कहते हैं। और गुफा जो होती है वो बहुत अंधेरी होती है और कई बार गुफा है वो बहुत डरावनी भी होती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो बद्ध जीवात्मा है उनके उनका जो हृदय है वो एक अंधेरी डरावनी गुफा के समान है। इतना अंधेरा है इस गुफा में कि यदि वो व्यक्ति स्वयं भी जाना चाहे तो डरेगा, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे अंदर कितना अंधेरा है इस गुफा के अंदर। हृदय कंदरे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तुलना कर रहे हैं कि अंधेरी और डरावनी गुफाओं में कौन रहता है? एक ही जीव रहता है और वो है सिंह। केवल एक सिंह है जो निडर होकर एक अंधेरी गुफा में रह सकता है। इसीलिए वो कहते हैं से सिंह कि हे चैतन्य महाप्रभु आप वो सिंह हो जो इन जीवों के हृदय कंदरा में रह सकते हो और किसी में हिम्मत नहीं, और किसी अवतार में हिम्मत नहीं कि कलयुग के जो निवासी हैं उनके हृदय कंदरा में जाकर वो निवास करें। आप ही एकमात्र अवतार हो। और फिर वो कहते हैं कलमश द्विरड़ नाशे यहां हुंकारे। जब वो सिंह उस गुफा से हुंकारता है, जब वो केवल एक हुंकारता है, हुंकार देता है, तो सारे जो बड़े बड़े हाथी हैं उस जंगल के वो थर थर कांपते हैं उस सिंह की हुंकार से। जब वो उस कंदरा से हुंकारता है सिंह, तो वो बड़े बड़े जो हाथी हैं जंगल के उनकी तुलना की गई है हमारे हृदय के कलमशों से, कि हमारे जो हृदय के कलमश है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये सब विशाल विकराल हाथी के समान है। और हाथी को जंगल में एक ही पशु हरा सकता है और वो है सिंह। तो चैतन्य महाप्रभु की यहां पर तुलना इतने सुंदर तरीके से उस सिंह से की गई है जो हमारे हृदय कंदरा में प्रवेश कर हमारे सारे जो कलमश हैं एक हुंकार से सारे कलमशों का नाश कर सकते हैं। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु अब प्रारंभ किए हैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा एक मत्त सिंह के हुंकार के समान नाम कीर्तन करते हुए। और क्या वो कीर्तन कर रहे थे, कौन सा कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया जब वो दक्षिण भारत की यात्रा अब शुरू किए हैं। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे सिंह के समान। कृष्णा 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 पाही माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। बोलो कृष्णा 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 पाही मा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब अपना कीर्तन प्रारंभ किए तो जहां कहीं पर भी चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन को करते हुए गुजरते थे तो वहां के सारे जो जीवात्मा रहने वाले वो सब चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कीर्तन में वो भाग लेना शुरू कर देते थे। और यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं से लोक प्रेम मत हन बोले हरि, हन बोले हरि कृष्ण प्रभुर पाचाय संगे याया दर्शन सदृशन। कि जो भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे वो हरि हरि हरे कृष्णा इस प्रकार से बोलकर चैतन्य महाप्रभु के पीछे वो भागना शुरू करते थे। और चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की स्ट्रैटेजी क्या थी देखिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कतक्षणे रही प्रभु तारे आलिंगन विद्या करिला तारे शक्ति संचारन। कि केवल चैतन्य महाप्रभु जाकर आलिंगन कर लेते थे किसी का, बस चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, सारा जो कृष्ण प्रेम है सारा जो भगवत विद्या है संचारित उसके अंदर ट्रांसफर, फाइल्स ट्रांसफर होता है जैसे कंप्यूटर में। चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे कि कोई कीर्तन में बहुत उत्साह से नृत्य कर रहा है, भाग ले रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु केवल उसको जाकर एक आलिंगन दे देते थे और बस उसका फिर तो हो गया कल्याण। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही आलिंगन कर दिया, और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु केवल उस व्यक्ति को कीर्तन में केवल पूरा निमग्न ही नहीं कर देते थे, बल्कि यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। कि वो व्यक्ति जब अपने गांव जाता था, एक व्यक्ति कोई गांव से आया है और चैतन्य महाप्रभु ने उसे आलिंगन कर कर उसे भेज दिया अपने गांव में, तो वो व्यक्ति पूरे गांव को कृष्ण भावना भावित बना देता था। यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। तो ये शक्ति थी चैतन्य महाप्रभु के अंदर कि चैतन्य महाप्रभु जब अपनी शक्ति देते थे तो वो व्यक्ति इस प्रकार का प्रचारक बन जाता था कि वो अकेले अपने पूरे गांव को कृष्ण भावनामृत बना देता था। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक प्रचारक को सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए, कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कि जब तक कृष्ण की शक्ति नहीं, नित्यानंद प्रभु इतने वर्ष उन्होंने यात्रा की और इतने वो भाव विभोर होकर अपनी भक्ति कर रहे थे, जब तक चैतन्य महाप्रभु ने आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ नहीं किया। वो प्रतीक्षा कर रहे थे, जब मुझे आदेश मिलेगा तब जाकर मैं प्रचार प्रारंभ करूंगा। इसीलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा, परंपरा, आचार्यों की, गुरु की कृपा होती है, तब जाकर हम ये जो ज्ञान है हमें मिला है ये दूसरों को हम दे सकते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघय ते गिरम यत कृपा तहम तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। कि जब श्री गुरु की कृपा होती है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्राप्त होती है, तब जाकर हम ये प्रचार कर सकेंगे। और हमारे इस्कॉन में देखिए, बड़े बड़े प्रचारक जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, इतने अब वो प्रचार कर रहे हैं, वो बताते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के पहले उन्हें कुछ बोलना भी नहीं आता था, और अब बड़ा बड़ा प्रचार, प्रवचन और लोगों को परिवर्तित कर उन्हें कृष्ण भावना में लगा रहे हैं, उनको प्रचारक बना रहे हैं। जैसे हृदयानंद गोस्वामी, आप लोगों ने सुना होगा उनके विषय में, और उनके प्रवचन बहुत बड़े, वो विद्वान हैं हमारे संस्था के और उन्होंने डिग्री ली है हार्वर्ड से। तो हृदयानंद महाराज वो बता रहे थे कि जब वो नए नए अब इस्कॉन में आए थे तो उनको उनको कहा कि बस कुछ समय हुआ था, कुछ एक दो महीना, तो उनको कहा कि आज का क्लास आप दीजिए। तो क्लास, कौन सा क्लास? भागवतम क्लास, और कौन सा क्लास? तो इतना डर गए, बोला अबे सबके सामने मैं, मुझे तो कुछ फिलॉसफी पता नहीं, अभी अभी तो मैं आया हूं। बोला अरे एक महीना बहुत हो गया। तो अब उनको क्लास देने के लिए कहा, तो उन्होंने पता है अपनी पहली क्लास कैसे दी? उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर एक कैसेट में ले लिया और वो ईयरफोन्स कान में डाल लिए और अपना सर जो है चद्दर से ढक लिया, और यहां पर वो टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद का जो कैसेट लेक्चर है उसको रखा, और जैसे प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य उसको पॉज करते थे और उसी को रिपीट करते थे, सो वी आर नॉट दिस बॉडी, फिर पॉज करके सुनते थे अगला वाक्य क्या है, सो कृष्णा सेज वी आर नॉट दिस बॉडी, फिर से दूसरा वाक्य, और आंख बंद करके, पूरा आंख बंद करके। तो लोगों को लगा बहुत मननशील क्लास है। बहुत ही मनन कर 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 एक एक वाक्य को नाप तोल कर वो दे बोल रहे हैं। तो वो उनका पहला क्लास था एज इट इज, शिल प्रभुपाद एज इट इज। और एक हमारे बंबई के भक्त हैं, बड़े काउंसलर हैं अभी, वो बता रहे थे कि अभी वो बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, इतने काउंसिलीज हैं उनके, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तो इतने शर्मीले थे, वो इतने शर्मीले थे कि घर में जब फोन बजता था तो वो डरते थे कि फोन पे मैं क्या बोलूं, फोन उठाकर कैसे मैं शुरू करूं बोलना। देखिए आजकल यदि ये सब बातें बोले तो लोग आश्चर्य करेंगे, फोन पे बोलने के लिए शर्माना क्या है, कीप टॉकिंग सब जगह बिलबोर्ड में क्या लिखा जाता है, करते जाओ बात करते जाओ। तो इन्हें फोन पर बात करने में शर्म आती थी, डरते थे कि कैसे मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। और अभी वो प्रभुपाद जी की कृपा से और भक्तों की कृपा से वो बहुत अच्छा और सुंदर प्रवचन करते हैं। तो उन्हें विश्वास ही नहीं कि मैं वही व्यक्ति हूं, और जो उनको पहले से जानते थे वो कहते थे कि ये व्यक्ति जो फोन उठाने में शर्माता था, ये व्यक्ति अब माइक पर प्रवचन कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कुछ विद्वान आए थे, संस्कृत के पंडित इत्यादि आए थे, प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने पूछा एक ही प्रश्न पूछा, कृष्ण कौन है बताओ। तो शुरू किए, कृष्ण जो शब्द है वो संस्कृत का ऐसा शब्द है कि इसका यदि विच्छेदन किया जाए, छोड़ो छोड़ो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बताओ कृष्ण कौन है। तो वो अपना संस्कृत का ज्ञान सुनाने लगे, तो प्रभुपाद जी ने देखा श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी पुत्री सरस्वती वो खेल रही थी, प्रभुपाद जी ने उसे बुलाया, सरस्वती इधर आओ, कृष्ण कौन है। वो कहती, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद जी ने कहा, देखो तुम्हारा सारा जो संस्कृत का ज्ञान है ना, इसने एक वाक्य में तुम्हें हरा दिया। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे जब वो छोटी सी सरस्वती जब ट्रेन में जाती थी, क्योंकि वो इतना सुनी थी प्रभुपाद का लेक्चर, खेलते खालते जो लेक्चर सुनी थी, परंतु क्योंकि शुद्ध भावना थी और प्रभुपाद की कृपा मिली हुई थी, तो कभी ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन के अन्य यात्रियों को जाकर कहती थी, कृष्ण का जप कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट डोंट यू चैंट हरे कृष्ण। तो सभी लोग, इतना छोटी सी है और वो बोल रही है, तो वो लोग, हाँ बोलो कैसे करना चाहिए, मैं बताती हूँ, हरे कृष्ण ऐसे ऐसे करना चाहिए और चार नियम का पालन करो। तो ये थोड़ा उसे, चार नियम, बोला हाँ। और बोलते थे, वो बोलती थी क्योंकि वो प्रभुपाद के लेक्चर में सुनती थी, चार नियम में परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। तो सारे जो यात्री होते थे वो थोड़ा शर्मा जाते थे कि छोटी सी ऐसी इस प्रकार का आदेश और निर्देश दे रही है हमें। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि ये जो सरस्वती ने प्रचार करती है ये असली प्रचार है, एज इट इज, कोई इसमें तोड़ मरोड़ कर नहीं, ये नहीं कि कृष्ण के शब्द का ये विच्छेदन करेंगे, ये व्याख्यान करेंगे संस्कृत के उस अमर कोर डिक्शनरी के अनुसार ये है। जैसे सची माता और निमाय, छोटे से निमाय और सची माता की कथा है कि एक बार सची माता ने निमाय को संदेश दिया खाने के लिए, तो निमाय संदेश के बजाय माटी खाने लगे। तो सची माता, ये क्या संदेश दिया खाने के लिए, माटी क्या खा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय कहते हैं कि ये संदेश में और इस माटी में क्या अंतर है, ये संदेश कहां से बना है, दूध से, दूध कहां से आया, गाय से, गाय ने दूध कैसे पैदा किया, घास खाकर, घास कहां से उत्पन्न हुआ, माटी से, तो माटी से ही उत्पन्न हुआ है ये संदेश, तो मैं माटी खाऊं या संदेश खाऊं क्या अंतर है। तो सची माता निमाय को कहती हैं कि हां तुम्हारा कहना सही है, परंतु फिर भी उसके अंदर अंतर है, यदि तुम्हें पानी को पीना है तो एक घड़े में पानी डालकर पियोगे, ऐसा नहीं कि पानी को माटी पे डाल दिया उसको पी पाओगे। वही माटी का जब घड़ा बनता है तो वो माटी अलग हो जाती है, घड़े के अंदर की जो माटी वो अलग होती है। इसीलिए ये माटी और ये संदेश जिसे तुम माटी कह रहे हो दोनों अलग है। तो निमाय कहा बहुत बुद्धिमान हो, अब मैं खाऊंगा संदेश। तो चैतन्य महाप्रभु इस कथा से ये दर्शा रहे थे कि जो मायावाद भाष्य है इसको एक साधारण सी महिला गृहिणी भी हरा देगी। और क्योंकि सची माता को भगवान की कृपा मिली थी इसलिए, जैसे हम एक दो साल पहले जब वहां गए थे पाश्चात्य देश, तो वहां पर एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति वैभव महाराज, वो जर्मनी रशिया यहां के हैं, वो तो बता रहे थे, उनको एक भक्त ने प्रश्न पूछा गीता नगरी में, भक्ति तीर्थ महाराज जब अपना शरीर त्यागने वाले थे तो वहां पर वो सभी आए थे, तो एक भक्त ने भक्ति वैभव महाराज से प्रश्न पूछा कि हम गुरु की कृपा और या शक्ति गुरु की कैसे हम अर्जित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब वो ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने उनको, वो क्योंकि वहां के थे रशिया जर्मनी के थे, तो उन्होंने उनको अंग्रेजी का एक शब्द नहीं पता था कि अंग्रेजी में द का अर्थ क्या होता है, व्हाट का अर्थ क्या होता है, ये भी नहीं पता था उन्हें, कुछ नहीं, केवल अपनी रशियन भाषा जानते थे वो। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को एक किसी भक्त के द्वारा एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, ये पूछते हुए कि आप कुछ आदेश दीजिए मैं क्या पालन करूं। तो प्रभुपाद जी लेटर में लिखते हैं मेरी सारी बुक पढ़ो, सारी पुस्तकें पढ़ो, और उस समय सारी पुस्तकें इंग्लिश में थी। तब इनको लगा मेरे को तो एक अक्षर इंग्लिश का आता नहीं और प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, तो फिर से पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मुझे एक अक्षर इंग्लिश का नहीं आता तो मैं कैसे, जब तक अनुवाद नहीं होता तो मैं कैसे इसको पढ़ूं। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिखा, फिर से एक ही लाइन लिखा मेरी सारी पुस्तकें पढ़ो, और सारी के नीचे अंडरलाइन किया, ऑल माय बुक्स, रीड ऑल माय बुक्स, और ऑल के नीचे अंडरलाइन कर दिया, मतलब उसके ऊपर सब बुक पढ़ो। और भाषा आती है कि नहीं उसके विषय में कुछ नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने। तो इन्हें लगा कि प्रभुपाद जी ने दो बार आदेश दिया है, तो उन्होंने डिक्शनरी ली, जो डिक्शनरी होती है रशियन इंग्लिश टू रशियन, वो डिक्शनरी ली, और डिक्शनरी लेकर एक एक शब्द को पहले देखते थे प्रभुपाद की पुस्तक में, फिर डिक्शनरी खोलते थे किसका अर्थ क्या है, फिर दूसरा अक्षर, दूसरा शब्द, उसका अर्थ क्या है, तीसरा शब्द, उसका अर्थ क्या है, एक एक शब्द का ऐसे वो अनुवाद डिक्शनरी में, रशियन डिक्शनरी में देख देख कर, देख देख कर प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें पढ़ी उन्होंने। सोचिए, देखिए कितना दृढ़ निश्चय इनका, हमें तो भाषा सब कुछ आती है फिर भी मुश्किल होता है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, और ये देखिए प्रभुपाद के आदेश का ऐसा पालन कर रहे थे। और फिर इन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि आज ये स्थिति है, और ये सब कुछ वो उत्तर इंग्लिश में दे रहे हैं, बोले आज स्थिति है कि मैं एक महीना पहले यहां अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 घंटा इंग्लिश का लेक्चर देके आया हूं। इसे कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, श्री गुरु की कृपा। जिनको अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था, हालांकि इस्कॉन में आने के बाद लोग अंग्रेजी बहुत अच्छी से सीख लेते हैं, इसलिए कई बार कहते हैं नो इंग्लिश नो कृष्णा, कि जब तक अंग्रेजी नहीं आएगी कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक हमारे सन्यासी को पूछा गया एक प्रश्न कि यदि मुझे ये सारी जो भाषाएं हैं, मैं जैसे अफ्रीका के कोई भक्त हैं उनकी जो भाषा है उसे कहते हैं स्वाहिली, और वो ऐसी भाषा है कि जैसे अन्य कोई भाषा होती है वो भी हमको समझ में नहीं आती, परंतु वो ऐसी भाषा है कि बिल्कुल कोई जान नहीं पाता कि कौन सी भाषा बोल रहा है, जान भी नहीं पाएगा कि क्या भाषा बोल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कि यदि मैं इस भाषा में प्रार्थना करूं भगवान के प्रति तो भगवान समझेंगे। तो इस सन्यासी से पूछा गया कि भगवान समझेंगे मेरी भाषा, क्योंकि ये पता नहीं वेदों में भाषा है कि नहीं, कहां से आई ये भाषा। तो और पूछा कि भगवान को सब भाषा आती है, सब भाषा समझते हैं भगवान। तो सन्यासी ने कहा हां भगवान श्री कृष्ण सब भाषा समझते हैं एक को छोड़कर, उर्दू। मजाक में कहा। तो यहां पर देखिए चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के द्वारा यहां पर जो भी उनकी शक्ति को ग्रहण करता वो जब अपने गांव में जाता तो वहां पर पूरे गांव को वो भक्त। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो भ्रमण करते हुए किसी को आलिंगन कर दिया, वो गया अपने गांव को पूरा भक्त बना दिया। फिर आगे गए कीर्तन किया, आलिंगन किया, वो जाकर अपने पूरे गांव को भक्त बना दिया। इस प्रकार से गांव के गांव, गांव के गांव, ग्राम के ग्राम भक्त बन रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि इस प्रकार से सबको परिवर्तित कर रहे थे, कृष्ण भावनामृत बना रहे थे, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में क्यों नहीं किया। तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक में वो इसका कारण बताते हैं कि क्यों नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का प्रचार कार्य नहीं शुरू किया। वो कहते हैं नवद्वीपे यही शक्ति न कैले प्रकाश, से शक्ति प्रकाशी निस्तारिले दक्षिण देशे। कि नवद्वीप में उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रकाश इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां के लोग वो चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण व्यक्ति मानते थे। इतने वो अभिमानी थे, जो स्मार्त ब्राह्मण थे नवद्वीप के, इतने अभिमानी थे कि वो जानते थे कि मैं ही और हम ही केवल जो है वो कृष्ण का प्रचार कर सकते हैं, या कृष्ण की भक्ति या जो कुछ कृष्ण के विषय में केवल हम ही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से कि हमें भी प्रचार वहां पर करना चाहिए जहां पर स्थिति अनुकूल हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़कर दक्षिण भारत गए, देखा कि दक्षिण भारत में अनुकूल है प्रचार के लिए, और इसलिए चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमने भी इसलिए पाश्चात्य देश में प्रचार प्रारंभ किया क्योंकि हमने देखा कि यहां पर लोग अनुकूल भाव से ग्रहण कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने भारत में पहले, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में नहीं किया प्रचार क्योंकि देखा कि सब इतने अभिमानी हैं, वैसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने भारत में जब प्रारंभ किया प्रचार करना तो हमने देखा कि सब लोग क्या कहते थे, हमें पता है ये भगवद गीता और ये महामंत्र, ये सब नियम ये पता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक मैं प्रभुपाद जी का इंटरव्यू सुन रहा था सूरत में, सूरत के कुछ रिपोर्टर वो प्रभुपाद जी का इंटरव्यू ले रहे थे और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से वो पेश आ रहे थे प्रभुपाद जी के सामने, और प्रभुपाद जी सिंह, एक सिंह के सामने गरज रहे थे उनके ऊपर। तो वो पूछ रहे थे कि स्वामी जी आपने ये पाश्चात्य देश में जाकर ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसको सबको दे दिया आपने ऐसे ही, मतलब ये कि क्यों ऐसा किया आपने, नहीं करना चाहिए था, ये उनका आशय था पूछने का कि सबको आपने पाश्चात्य, ये हिप्पियों को दे दिया, ये हिप्पियों को आपने ये महामंत्र दे दिया। ये महामंत्र हमारे भारत का है और ये भारत का महामंत्र आपने हिप्पियों को दे दिया। प्रभुपाद ने कहा कि हिप्पी भी महामंत्र का जप करता है और तुम नहीं करता, सीधा उसको सीधा होगा, तुम नहीं करता महामंत्र का जप तो कौन गिरा हुआ है। यदि हिप्पी भी कर सकता है महामंत्र का जप और प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य बैठे थे, पूछो इनसे इनके जीवन देखो, चार नियम का पालन करते हैं, यहां तक कि चाय कॉफी भी नहीं पीते। आज सुबह चाय पी की नहीं तुमने? चाय कॉफी भी नहीं पीते, चार नियम का पालन करते हैं, अपना घर बार छोड़कर कृष्ण की सेवा में शरणागत हैं, और कहते हो कि क्यों इनको दिया। तो फिर वो थोड़ा, वो रिपोर्टर थोड़ा डर गए, तो फिर पूछते हैं, हम देखते हैं कि आपके मंदिरों में ये बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर धनी, ये आपके इस्कॉन के मंदिरों में, जैसे गांधी जी गरीबों के घर में झोपड़ी में जाकर उनको सब संस्कार दिया करते थे, तो आपके ये प्रोग्राम सब बड़े बड़े लोगों के घर में ही होते हैं और बड़े बड़े लोग ही आपके मंदिर में आते। प्रभुपाद जी ने कहा, हमने बोर्ड लगाया बाहर, खाली अमीर व्यक्ति को प्रवेश है, हमारे इस्कॉन मंदिर में कुछ बोर्ड लगाया ऐसा? तो वो कहता है कि बोर्ड की क्या आवश्यकता है, जब देखते हैं गरीब व्यक्ति आके देखेगा कि केवल अमीर व्यक्ति बैठे हैं, तो वो कैसे बैठ पाएगा उनके मंदिर, तो बिना बोर्ड के लोग समझ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गरीब कौन है? गरीब वो है जिसके अंदर कृष्ण भावना नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, यदि कृष्ण भावना नहीं है तो वो गरीब है, और हम उन गरीबों के पीछे भाग रहे हैं, वो गरीब जिनके अंदर कृष्ण भावना नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वो यहां पर कहते हैं इस तात्पर्य में कि हमने इतना प्रयास किया इस भारत में, प्रभुपाद जी दिल्ली में उस अवस्था में कड़ी धूप में बैक टू गॉडहर्ड लेकर घूमते थे पत्रिका, कहां पर घूमते थे? चाय की दुकानों पर, जहां पर लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, गप्पा मार रहे हैं, वहां पर जाकर कहते थे कि आपकी चाय हो जाए उसके बाद इसको थोड़ा पढ़ना। और कोई इतना पैसा चाय के ऊपर गवाते थे, कोई श्रील प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी फ्री में दे रहे थे, ऐसा कि नहीं पैसा मांग रहे थे, मुफ्त में। ऐसी भी स्थिति आई कि एक बार एक कोई बैल भागते भागते प्रभुपाद जी से टकराई और प्रभुपाद जी वहां पर ही गिर गए, और इतनी कड़ी धूप के कारण प्रभुपाद जी को वहां पर बेहोशी जैसी हो गई, और प्रभुपाद जी जा जाकर वो याचना करते थे परिवारों से कि आपके पास कितने पुत्र हैं, चार हैं, पांच पुत्र हैं, एक पुत्र मुझे दीजिए ताकि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकूं। लेकिन प्रभुपाद जी को किसी ने सहायता नहीं की, और इसलिए प्रभुपाद जी हर समय कहते थे कि ये जो पाश्चात्य भक्त हैं, विदेशी भक्त, मैं हर समय इनका ऋणी रहूंगा, क्योंकि जब मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब इन्होंने मेरी सहायता की। और इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु भी, उन्होंने देखा कि नवद्वीपवासी इतने अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, तो ये नहीं सुनेंगे इस प्रचार को, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा चाहे वो पतित भी क्यों ना हो, परंतु यदि वो अनुकूल भावना से ले रहे हैं इस कृष्ण भावना को, तो मैं उनका जाकर उद्धार करूंगा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वो आगे निकले, और यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, देखिए अब इस भावना में एक बहुत ही ज्यादा ऐसा श्लोक वो कह रहे हैं कि जो हमें जागृत कर देगा हमारे आध्यात्मिक पथ में। वो कहते हैं, अलौकिक लीला यार न हय विश्वास, इहा लोक परलोक तार हय नाश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, अलौकिक लीला, यदि इस लीला के ऊपर किसी को विश्वास नहीं, अलौकिक लीला नहीं करे विश्वास, यदि कोई विश्वास नहीं करता चैतन्य महाप्रभु की इन अलौकिक लीलाओं के ऊपर, इहलोक के परलोक तारा होए नाश, कि उस व्यक्ति का इस लोक में और परलोक में नाश निश्चित है यदि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक लीला पर विश्वास नहीं करता। तो अचानक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा का वर्णन करते करते भाव में आकर ये श्लोक कह रहे हैं कि कोई यदि विश्वास नहीं करता तो उसका नाश होगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु अब वहां से निकलकर वो पहुंचते हैं कूर्म क्षेत्र, और कूर्म क्षेत्र में उन्होंने उद्धार किया कूर्म ब्राह्मण का, और इसकी चर्चा हम करेंगे कल कि चैतन्य महाप्रभु में कूर्म क्षेत्र में क्या क्या हुआ और किस प्रकार से उन्होंने कूर्म ब्राह्मण का उद्धार कूर्म क्षेत्र में किया। पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।